ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، لا یغفرو، میں لا پہ اتنا زور اس لیے دے رہی ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اللہ نہیں بخشے گا. اللہ تعالیٰ کے تو جب بھی ہم ذہن میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کوئی بھی خیال تو یہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور رحیم ہے، وہ تو بخشنے والا ہے. کیا ایسی بات ہو گئی کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا اللہ نہیں بخشے گا، نہیں بخشے گا، کس کو نہیں بخشے گا، کس سے اللہ اتنا ناراض ہے؟ کیا کام ایسا ہوتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشش نہیں ہے؟ اَن یُشْرَکَ بِهِ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، شریک ٹھہرایا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور بخش دے گا اس کے علاوہ کوئی بھی جو اس کو بھی وہ چاہتا ہوگا، جو بھی عمل ہوگا یا جس کے لیے بھی وہ چاہتا ہوگا وہ بخشش کا پروانہ دے سکتا ہے کہ میں نے اس کو بخش دیا. اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اللہ تو نے اس کو کیوں بخشا. ٹھیک ہے، تو بہت ہی یہ اہم بات ہے کہ انسان اس بات کو سیریس لے کہ شرک کیا چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما دے کہ اللہ نہیں بخشے گا اس کو، وہ غفور الرحیم ذات نہیں بخشے گی اس کو، جس نے کہا کہ میرے پاس پہاڑوں کے برابر اور آسمان تک بھی تمہارے گناہ آ جائیں تب بھی میں ان کو بخش دوں گا. لیکن اسی حدیث میں آتا ہے لیکن تب کہ میرے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہ کیا ہو تب میں اس بندے کو بخش دوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شرک اتنا کبیر گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ گناہوں میں بھی سب سے ٹاپ پہ جو پہلا گناہ آتا ہے وہ شرک ہے. تو اب آپ خود اندازہ کریں کہ اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ شرک کیا ہوتا ہے. اسی کا الٹ ہے توحید، توحید اس کا الٹ ہے. توحید کو سمجھیں گے تو شرک کی سمجھ آ جائے گی. توحید کی تین قسمیں ہیں، یہ آپ لکھ لیں، تین قسمیں ہیں توحید کی. نمبر ون توحید ربوبیت، نمبر ٹو توحید اسماء و صفات، نمبر تھری توحید الوہیت. توحید ربوبیت کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ کو رب ماننا، اس میں اس کو ایک ماننا کہ وہ مالک ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ مجھے سروائیول دینے والا ہے، میری ذات قائم اس کے ذریعے ہے، یہ سب، اور پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، یہ سب، یہ توحید ربوبیت میں آتا ہے. توحید اسماء و صفات میں کیا آتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ جو سارے کام کرنے والا ہے، جو بھی افعال ہو رہے ہیں دنیا میں، وہ سارے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، کوئی اور نہیں کرتا. تو اسماء و صفات جتنی بھی اللہ کی ہیں ان کو ماننا. اور توحید الوہیت کیا ہے؟ توحید الوہیت اصل میں یہ ہے توحید فی العبادت. یاد رکھیے ایک بات، ہم سوچتے ہیں نا کہ یہ جو شرک کرنے والے ہیں یہ اللہ کو نہیں مانتے. بھئی قرآن آپ کا کہتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آسمان اور زمین کو کس نے بنایا تو کہتے ہیں اللہ نے، تو پھر وہ کیسے مشرک تھے؟ مشرکین مکہ، ان کی بات کی جا رہی ہے. جب وہ کہا گیا، جب وہ بحری جہازوں میں جاتے ہیں سمندروں کے اندر اور طوفان میں ان کے جہاز پھنس جاتے ہیں، تو پھر ایک اکیلے اللہ کو پکارتے ہیں، تو کیا وہ اللہ کو نہیں جانتے تھے؟ حج کرتے تھے وہ اللہ کے گھر کا، لبیک اللہم لبیک بھی کہتے تھے. تو کیا بات تھی پھر، کیا کس چیز کے خلاف اسلام آیا کہ یہ شرک ہے اور یہ نہیں کرو؟ دیکھیں وہ اللہ کو مالک مانتے تھے، خالق مانتے تھے، اس کی یہ مانتے تھے کہ اللہ کام کر رہا ہے سارے، لیکن کہاں پہ گڑبڑ کہاں تھی؟ پرابلم پھر کیا تھا؟ پرابلم یہ تھی، اللہ کے وجود کو ماننے میں پرابلم نہیں تھی، پرابلم یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اب اس کے بعد یہ تو ہم نے مان لیا، مگر اب عبادت کے لائق یہ بھی ہیں، یہ جو ہمارے جو بھی نیک لوگ دنیا سے گئے ہوئے، یا کوئی فرشتے ہیں یا کوئی ہیں. اور عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت میں، عبادت کا ویسے ماننا کیا ہے؟ جب ہم عبادت کا لفظ بولتے ہیں اصل میں یہی نہیں سمجھ آنا، تو عبادت ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، چاہے اللہ کا کوئی بات ماننے ہی نہ، بس منہ سے بولتے رہتے ہیں عبادت عبادت. لغت میں عبادت کا مطلب ہے الاطاعت بالتذلل، इताअत तजल्लुल के साथ, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई, इंतहाई आजी के साथ अपने आप को जलील करके, हकीर करके, नीचा करके किसी की इबादत कर, किसी की इताअत करना, उसका हुक्म मानना, ये होती है इबादत। मोहब्बत के साथ ये होती है इबादत। अब हुक्म चाहे कोई माने ना माने, उसको समझ लिया कि हम इबादत ही कर रहे हैं, लेकिन इबादत को करने के कहीं किस किस तरह से आप इसका इजहार करेंगे, ये तो एक बात हो गई ना दिमाग में। आप इजहार कैसे करते हैं? दुआएं, सजदे, नमाजें, कुर्बानियां, मन्नतें, मुरादें, भरोसे, ये सब इस तरीके से आप इबादत को मैनिफेस्ट करते हैं, आप उसका इजहार करते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने ये रिचुअल्स रखे हैं, ये मरासे में इबादत है। ठीक है, आप क्या होता था, दुआएं उनकी किसी और के सामने, सजदे उनके किसी और के सामने, ये यहां पे ही तो शिर्क आ जाता है, यहीं पे तो है कि इबादत में शिर्क करते हैं। याद रखें, दुनिया में कोई मुशरिक ऐसा नहीं है, आप हिंदुओं को भी पूछ लें किसको मानते हैं, वो आपको जितने भी अपने बुत बनाएंगे बताएंगे, उसके बाद क्या कहते हैं, ऊपर वाला तो वो एक ही है। ऊपर वाला किसी को मानते हैं ना, कहते हैं ऊपर वाला वो एक ही है, तो वो ये थोड़ी कहते हैं कोई है ही नहीं। इमरान बिन हुसैन जो जब जिस वक्त मुशरिक थे, इस्लाम लाने से पहले की बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कितने खुदाओं को मानते, बोले 7 को मानता हूं, 6 छोटे हैं तो एक बड़ा है, तो बड़े को तो वो भी मानते थे। इससे पता चलता है हमें जो गलत फहमी है ना वो दूर करें, पहले तो शिर्क को समझे, शिर्क है क्या। तो असल बात है कि शिर्क उलूहियत में करते थे, इबादत में करते थे, इताअत में करते थे, समझ आई। जबकि इस्लाम क्या कहता है, अल्लाह के अलावा किसी के लायक नहीं है, किसी की ये शान नहीं है कि उसकी इबादत की जाए। समझ आ गई बात। तो जैसे सूरह यूनुस में अल्लाह ताला ने फरमाया, वो इबादत करते हैं ऐसों की जो उनको कोई फायदा नहीं देते ना नुकसान देते, फिर इबादत क्या हुई? फिर वो कहते क्या है कि हम अल्लाह के यहाँ इनको सिफारशी करते हैं, ये हमें अल्लाह के करीब करते हैं, वो अल्लाह को छोड़ के नहीं इनको मानते थे, वो कहते थे ये हमें अल्लाह ही के करीब करते हैं, हम कौन सा कुछ बुरा कर रहे हैं, असल में तो हमने अल्लाह के करीब ही होना है ना, अब इस जरिए को इस्तेमाल कर ले। ठीक है, तो यानी कानून में, इताअत में, उम्मीदों में, सजदों में, दुआओं में, वहां पे आके किसी और को बना लेते थे अपना खुदा। और आज देखें, आज उम्मते मुस्लिमा का हाल क्या है, हाल ये है इनका कि आप अपने मुल्कों में देखेंगे जगह जगह पे कब्रें बनाई गई हैं, और फिर उन कब्रों को बाकायदा पूजा जाता है, उनकी इबादत की जाती है। आप कहेंगे इबादत तो नहीं करते, वो इबादत तो अलग ही करते, इबादत क्या कैसे नहीं करते, जबकि वो दुआएं उनसे मांगते हैं, सजदे बाकायदा कब्रों पे किए जाते हैं उनकी तरफ मुंह करके, और फिर उसके बाद कई खड़े होके स्पीकरों पे कहते हैं कि जी देखें जी क्यों ना हम इनसे मांगे, देखो जी पानी में जो डूब रहा होता है वो भी तो मदद मांगता है किसी से, तो वो मदद मांगता है तो हम भी, अगर हमारी कोई मुसीबत है तो हम इनको कह रहे हैं तो ये भी आगे अल्लाह को कह देंगे, तो हम तो इसलिए इनसे कह रहे हैं क्योंकि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी नहीं कहा कि ए इब्राहिम अलैहि सलाम जो अल्लाह के खलील थे, अल्लाह ने उनको अपना खलील बनाया, अपना दोस्त बनाया, ए इब्राहिम आप हमारी ये बात अल्लाह के सामने कर दें, आप हमारी ये काम हमारा करवा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को देखें, 70 सहाबा को जब शहीद कर दिया गया था धोखे के साथ ले जाके, तो उन्होंने क्या दुआ की थी, या अल्लाह हमारे हाल की खबर अपने नबी को दे देना, ये नहीं उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हमें यहाँ पे शहीद किया जा रहा था, तो वहीं से कह देते वो। आज शिर्क कितना हो रहा है कि एक तो नबी अलैहिस्सलाम को समझा जाता है कि हम उनको पुकारें, उनकी कब्रों पे जाके उनको पुकारा जाता है, कब्र पे जाके खड़े होके वहां से उनसे दुआएं मांगी जाती है, जबकि सहाबा का तरीका देखें, हमने तो देखना है नहीं कि सहाबा कराम ने क्या इसी तरह किया था। हजरत उमर का जब आता है कि बारिश नहीं हुई थी, बुखारी में हदीस है कि तो क्या फरमाता, हजरत अब्बास को लेकर गए थे बारिश की दुआ करने के लिए, और क्या फरमाते हैं कि या अल्लाह जिस वक्त तेरा नबी जिंदा था तो उस वक्त हम उनको वसीले के तौर पे पेश करते थे, बारिश के लिए, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करते थे ना कि आप दुआ करें बारिश के, आप वो नहीं है हम में, तो हम आपके चचा को लेकर आए हैं। क्यों वो जाके कब्र पे क्यों नहीं कह देते थे कि या रसूलल्लाह आप हमारे लिए बारिश की दुआ कर दें अल्लाह से, हम हमारे ऊपर बारिश हो जाए, क्यों नहीं उन्होंने कहा? बहुत सोचे, अल्लाह अकबर। एक आदमी आया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उसने कहा था जो अल्लाह चाहे और जो उसका रसूल चाहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को भी इतना नापसंद किया था कि फरमाया तुम मुझे अल्लाह के मुकाबले में खड़ा करते हो, ये कहो कि सिर्फ ये कहो जो अल्लाह चाहे, बस माशा अल्लाह, ठीक है। अब वो सहाबी कह देते मेरी तो नीयत ये थोड़ी थी, मैंने तो असल में तो यही था कि अल्लाह चाहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज बिन जबल को सवारी के पीछे बिठाया हुआ था, तो उनको बहुत सारी नसीहतें की थी, तो आखिर में फरमाया जब तुम सवाल करो तो सिर्फ अल्लाह से करो, जब तुम्हें मदद मांगनी हो तो सिर्फ अल्लाह से मांगना। तो क्या सहाबा को ये मतलब नहीं पता था कि वो कोई डूब रहा हो पानी में तो वो किसी की मदद चाहे, तो हम तो इसलिए ही पुकारते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या रसूलुल्लाह मदद, या अली मदद, या फलां मदद, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी मदद, या गौसे आदम मदद। हम तो किन किन से मददें मांगते हैं, और नमाज में क्या कहते हैं, इया का नस्ताइन, झूठ बोलते हो, इया का नस्ताइन, ए अल्लाह हम सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं, झूठ। कि जब तुम जिंदगी में हमेशा कभी या अली मदद, कभी या रसूल अल्लाह मदद, या मोहम्मद मदद, या फलां मदद, जब तुम जिंदगी में ये कहते तो या का नस्ताइन, क्या क्या इसका मतलब रह गया? क्या ये झूठ नहीं है फिर? हाँ कोई जिंदा है तो आप जरूर उसको कहें। अब क्या हम कह नहीं सकते भाई जाओ बेटे पानी लेकर आओ, तो क्या हम मदद नहीं मांग रहे? हजरत ईसा अलैहि सलाम ने अपने हवारियों से कहा था कि मन अंसारी इल्लाह, कौन मेरा अल्लाह के हम मददगार है अल्लाह के कामों में, तो उन्होंने नहीं मदद मांगी थी और मांग सकते हैं इस तरह, मगर जिंदों से कहा था। गैब में किसी को नहीं पुकारा था उन्होंने, गैब में नहीं पुकारते थे वो नबी अलैहि सल्लत व सलाम का, तो सब नबियों को पता था कि एक आखिरी नबी है उनका ये नाम होगा, तो वो गैब से पुकारते रहते। और हमने आज बना लिया कि आदम अलैहि सलाम की जो बख्शिश हुई थी ना वो भी इसी तरह हुई थी, उन्होंने देखा था ऊपर तो वहां पे लिखा हुआ था मोहम्मद, तो उन्होंने कहा अल्लाह मैं इनके उससे मांगता हूँ। ये कहाँ से घड़ी भी हदीस है, ये कोई हदीस नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद सिखाई हमें, ये नहीं कहा मुझे पुकार लिया करना जिस वक्त मैं चला जाऊंगा। देखो तुम मेरी कब्र पे कह सकते थे ना, हाँ ये जरूर हमें बताया। देखिए याद रखें कोई बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कोई बात ऐसी नहीं है जो तुम्हारी भलाई की हो और मैंने ना तुम्हें बताई हो, कोई बात ऐसी नहीं है जिसके अंदर कोई ऐसी बुराई की बात हो, शर की बात हो तो तुम्हारे लिए और मैंने ना तुम्हें बताई हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा दीन पहुंचा दिया, तो क्या नहीं आप बता सकते थे जब मैं दुनिया से चला जाऊं लोगों मेरी कब्र पे आके मुझसे मांग लिया करना? हाँ ये जरूर फरमाया लोगों दरूद पढ़ा करना, अव्वल आखिर दरूद पढ़ा करना, दरूद पढ़ोगे तो दुआएं कबूल होंगी, तो ये भी फरमा देते थे कि मेरी कब्र पे आओगे तो दुआएं कबूल होंगी, क्यों नहीं कहा? और अभी मुझे किसी ने बताया कि वो दरियाए रावी जब पीछे हटाए तो वहां पे एक जनाब कब्र थी नीचे, अल्लाह ताला हमें माफ करे कि हम कैसे लोग हैं, कहते नीचे से कब्र निकल आई, तो वहां पे उन्होंने चादर डाल दी और वहां पे अब वो बैठ गए हैं और वहां पे सारी मन्नतें मुरादें शुरू कर दी। अब खुदा जाने किसकी कब्र, और सबसे पहली बात ये कि पानी के नीचे कब्र रह कैसे गई, कच्ची कब्र तो रह ही नहीं सकती पानी के नीचे, तो इतने अरसे से पानी के नीचे थी, अब वो पानी पीछे हटा तो कब्र एक्सपोज हो गई और बस लोगों को मौका मिल गया वो वहां पे बैठ गए। पर वो किसी बद की कमर है, किसकी कब्र है, पता नहीं कौन है इसके अंदर, उसको अजाब हो रहा है कि पता भी नहीं है, मगर कब्र मिल गई ना, तो बस हमारा ये हाल आज हो चुका है कि हम कब्रों को पूजने वाले बन गए, ढूंढते हैं कहीं को कब्र मिल जाए, या फिर कहते हैं कि हम बहुत बड़े मुवाहिद हैं, हम तौहीद वाले हैं। अल्लाह ताला ने सूरह नाम में फरमाया कि उन लोगों के बारे में कि वो लोग अल्लादीन आमनु व लम यलबिसू ईमान हम बिजुल्म, वो लोग जो ईमान लाए और उनने अपने ईमान को वो नहीं किया, गड़मट नहीं किया शिर्क के साथ, जुल्म के साथ, मतलब शिर्क के साथ, ये है हिदायत याफ्ता। ईमान इसका मतलब लाने के बाद भी लोग शिर्क की आमेजिश कर देते हैं, शिर्क मिक्स कर देते हैं साथ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिका अन उशरिका बिका शैअन अना आलम व अस्तगफिरुका मालम आलम। तो आप देखें कि शिर्क इतनी कबीह चीज है, यहां पे कहा गया शिर्क को अल्लाह नहीं माफ करेगा। जिस चीज में भी पता चल जाए कि ये शिर्क है, उसका शाइबा भी हो जाए ना, शक भी हो जाए, तो उससे दूर हो जाए। खालिस तौहीद, ये अल्लाह के यहाँ काबिले कबूल होगी। शिर्क से मिलावट किए हुए ईमान लेकर जाएंगे तो कबूल नहीं होंगे। इसलिए डरना चाहिए इससे कि कहीं हमसे शिर्क का कोई अमल ना हो जाए। तो अल्लाह नहीं बख्शेगा शिर्क को। क्या इसका ये मतलब है कि जिसने कभी शिर्क कर लिया तो अब उसके बाद बस खत्म उसका? नहीं, ये मतलब है जिसने कभी शिर्क किया हो और उस शिर्क में ही करते करते दुनिया से चला गया ना, उसकी नहीं कभी बख्शिश हो सकती। हाँ, जो अभी जिंदा है, शिर्क करता था, कभी किया था, आज समझ आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह, फौरन माफी मांग ले दुनिया से जाने से पहले। ठीक है, दूसरी बात क्या यहाँ पे पता चलती है, वयग्फिरु मा दूना ज़ालिक, अल्लाह ताला बख्श देगा जो इसके अलावा है। लिमन यशा, को याद रखिएगा, ये नहीं है कि अल्लाह बस इसके साथ जो भी इसके अलावा है वो तो माफ हो ही जाएंगे, अल्लाह ने सबकी गारंटी दे दी है। नहीं, गारंटी तो किसी की भी नहीं है। लिमन यशा, जिसके लिए वो चाहे उसको माफ कर दे। ठीक है, तो इसलिए ये भी ना समझ के बैठ जाए कि बस शिर्क नहीं करेंगे, बाकी जो मर्जी करते रहो वो तो माफी ही है। नहीं, वमन युशरिक बिल्लाहि फकद इफ्तरा इस्मन अज़ीमा, जो कोई शिर्क करे अल्लाह के साथ तो उसने बड़ा गुनाह, बड़ा अजीम गुनाह उसने घड़ लिया। इसने अब ये अल्लाह ताला ने शिर्क के लिए कोई दलील नहीं उतारी इस दुनिया के अंदर, कोई इसका कोई, आप इसको कहते हैं इसकी कोई प्रूफ है कि अल्लाह के साथ कोई है जो किसी चीज में भी, उसकी जात में, उसकी सिफात में, उसके कोई कहीं कोई है, कोई इसकी दलील नहीं है, बेसलेस है ये। तो इसलिए जो शिर्क करता है, समझ लो कि उसने बड़ा गुनाह कमा लिया। ये वो गुनाह है कि जो जिसको कहते हैं कि गुनाहे कबीरा में भी नंबर वन पे। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि आगे कुछ और लोगों की बात आ रही है। वैसे तो ये पीछे से जो बात चल रही है यहूद की चल रही थी और अहले किताब की चल रही थी, मगर सबके लिए ही है। उन्होंने तो ठीक है किया एक शिर्क, और उनका शिर्क ये था कि उजैर अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया। लेकिन एक बात याद रखें, सारे ज्यूज ने नहीं बनाया, उनमें भी एक एक फिरका है जिसने ये किया। तो फिर सारों को क्यों आ गया शिर्क? इसलिए कि उन्होंने अल्लाह की बात नहीं मानी। मैंने आपको बताया ना, इबादत क्या है? इताअत, इताअत आजी के साथ। इताअत ही नहीं है तो फिर क्या है? फिर किस चीज का बनाना कि हाँ हमने उसको इलाह बना ली, कि ये तो बात तो फिर बेसलेस बात हो गई। कोई औरत कहती है कि ये मेरा शौहर है, अभी शौहर है लेकिन ना उसके कोई हकूक देना, ना उसके साथ रहना, ना कुछ है, तो वो कैसे कह सकती है? वो तो उसको शौहर मानती ही नहीं है, समझ में। तो अल्लाह ताला को जब इंसान कहता है ना वो इलाह है, तो ये बहुत बड़ा कलमा है जो मुंह से निकालते हैं। समझ लें कि आपने कह दिया कि वो इस लायक है कि मैं उसकी इताअत करूं, क्योंकि इबादत के अंदर ही इताअत है ना, ओबीडियंस। लेकिन ओबीडियंस वैसे हमने नहीं करनी, हमसे नहीं अमल होता, ये हम अपनी जिंदगी में कहते। तो हम कि देखो, हम कहते क्या हैं और कर क्या रहे हैं, शायद इसलिए हम ये कहते हैं अल्लाह इबादत के लायक है, बस हम उसकी इबादत करते हैं, क्योंकि हमने हमेशा से बचपन से ये बात सुनी। जब बचपन से सुनी तो बस वही हमारी जुबानों पे, और उसको ही हम समझते हैं कि बस इसको कहने से ही बस सब हमारी निजात हो गई और बस हम मुसलमान हो गए। नहीं, यहूद को ये समझाया जा रहा है, जबकि वो सारे ये अल्लाह का बेटा बनाने वाले नहीं थे, इस बात को समझ लें। मगर उनके काम कैसे थे, अब तक तो आपको समझ आ गई होगी ना कि करते क्या थे वो। अलम तरो इलल लदीना युज़क्कूना अनफुसहुम, अब ये बात हम बहुत दफा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या तुमने उन लोगों को देखा जो खुद को पाक समझते हैं, अपने नफ्सों को, मतलब कि खुद को, अब यहूद में ये बीमारी बहुत ज्यादा थी, वो तो कहते थे बस हम तो पता नहीं क्या बड़ी चीजें, और आज तक भी समझते हैं, कहते हैं आप ज्यू बन नहीं सकते, याद रखें कोई यहूदियत इख्तियार नहीं कर सकता, इसलिए कि वो कहते हैं हम जो माँ की तरफ से यहूदी है ना, बस वही यहूदी है, कोई बाहर से हमारे अंदर नहीं आके मिल सकता। जैसे आज कोई भी मुसलमान बन सकता है, इस्लाम ला सकता है, यहूदियत कोई ला नहीं सकता, वो बस जो है वही है। वो कहते थे हम इतने पाकबाज हैं, अपने बच्चे को लाके दिखाते थे, कहते थे देखें आप बताएं कि इसको इसके ऊपर कोई गुनाह है नहीं है ना, तो इसी तरह हम भी पाकीज़ा हैं बच्चों की तरह, इतना अपने आप को करते थे। अल्लाह ताला को ये बात नहीं पसंद है, अल्लाह ताला ने फरमाया बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा, अल्लाह है जो किसको भी पाक करे, तुम अपनी पाकी के कैसे दावे कर सकते हो। वला युज़लमूना फतीला, अगर किसी ने कोई नेकी की होगी तो अल्लाह ने उसके साथ जुल्म थोड़ा ही करना। फतील कहते हैं खजूर की गुठली में, आज आप इसको देखिएगा कि खजूर को ले उसकी गुठली के अंदर जहां कट होता है उसमें एक बार ही एक सा धागा होता है। अरब अरब लोग तो खजूर बहुत खाते थे ना, तो उनको तो वाकफियत थी इससे, तो हमने तो शायद कभी उसे तवज्जो ही ना दी होगी, गुठली को नहीं कोई कुछ समझता तो धागे को क्या समझेगा। इतनी छोटी बारीक चीज भी है ना फतील के बराबर, इतना भी अल्लाह ने जुल्म नहीं करना। तुम ये ना समझो कि अल्लाह को पता नहीं चलेगा तो शायद मैं ही अपनी बातें बताऊं कि मैं कितनी नेक हूं, मैं कितनी पाकीजा हूं, नहीं अल्लाह जानता है, और वो तुम्हें दे देगा, फिक्र ना करो, यानी तुम्हारा बदला तुम्हें मिल जाएगा। फतील के बराबर भी काम किया होगा ना, उसका भी मिल जाना है, तो तुम फिर इतने परेशान क्यों होते, क्यों अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते। जहां पे हमने देखा कि कोई बैठा है अब अपनी बड़ाइयां शुरू कर दी, अपनी नेकियां बतानी शुरू कर दी, अपने काम गिनवाने शुरू, मैं तो ये भी करती हूँ, मैं तो वैसे भी करती हूँ, चाहे अपनी आप बोल के कहें, चाहे अपने अमल से कुछ करके दिखाएं, ऐसा कि दूसरा समझ ले कि भाई कितनी नेक है ये। अल्लाह ताला ने सूरह नजम में फरमाया फला तुज़क्कू अनफुसकुम, तुम अपने नफ्सों को पाकीजा करके ना बताओ, वो आलम बिमन तक़वा, अल्लाह को पता है कि कौन है जो जिसमें तकवा है, तुम्हारे बताने से थोड़ी है, अल्लाह को पता है। तो इससे पता चलता है कि हमें खुद अपनी तारीफ करना, अपनी बड़ाइयां बयान करना, अपने खानदान की या अपनी या अपने बच्चों की तारीफें, या अपने अपने पैसे की बातें, या अपनी बैक होम के हम कैसे होते थे, हमारी क्या 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 हमारी बात थी भाई, हम कितनी बड़ी चीज थे, या अपनी नेकी की, ये अल्लाह ताला के यहाँ इतनी कबी है। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह पाक करता है जिसको चाहता है, वो खुद नहीं पाक हो सकते। अगर कोई अपने आप को समझता है कि मैं नेक हूं, मैं बहुत बड़ी चीज हूं, अल्लाह है कि जिसको मकाम दे, अपने आप को बड़ा बनाने से कोई बड़ा नहीं बनता। और देखिए एक बड़ी प्यारी बात है, मुझे बड़ी पसंद है ये बात, कि देखिए अल्लाह ताला ने ना कौन सी सूरह निसा में आगे जाके आप पढ़ेंगे वरुसुलन कद कससना हुम अलैक मिन कबलु वरुसुलन लम नकसुस हुम अलैक, ए नबी कई रसूल ऐसे हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया है, और बहुत सारे ऐसे रसूल हैं जिनका हमने जिक्र भी नहीं किया। सुभान अल्लाह, मैं सोचती हूँ देखो कि वो कई रसूल ऐसे हैं जो गुमनाम ही रह गए, उनका नाम भी नहीं किसी को पता, और वो क्या है, कोई आम लोग नहीं है, वो अल्लाह के रसूल हैं लेकिन गुमनाम है, किसी को भी नहीं पता वो कौन थे, कब आए थे, उन्होंने क्या नेकियां की, उन्होंने क्या सबर किए, उनके साथ क्या हुआ, कुछ नहीं पता। तो ऐसे भी तो लोग हैं, उनके अजर अल्लाह के पास महफूज है। ये तो हमें जिन रसूलों का पता बहुत कम है, कुरान में 25 के करीब है, और कितने आए 1.25 लाख, और फिर उनका जिक्र भी नहीं है, वो भी तो हैं, और हम क्या है, हम क्या चीजें हैं, और हमारी क्या नेकियां होंगी, लेकिन हम कितनी बड़ाइयां अपनी बयान करते हैं, वो रसूलों के गुमनाम, और हम कोई शय भी नहीं है, और फिर भी देखो हम कितना बोलते हैं, हमारी बातें देखें, मैंने ये काम कर लिया, मैंने तो ऐसे कर लिया, वो कर लिया, कितनी अपनी मदा खुद करते रहते हैं। मदा वो ही होती है जो कोई आपके लिए करे, और वो भी आपकी पीठ पीछे करे तो वो ही अच्छा है, क्योंकि देखिए बुखारी में पहले भी ये बात आ चुकी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा एक आदमी को दूसरे की तारीफ करते हुए सुन के फरमाया अफसोस है तेरे ऊपर, तूने अपने साथी की गर्दन तोड़ दी, क्योंकि वो उनके उसके सामने उसकी तारीफ करता रहा था। तो फरमाया अगर तुम में से किसी को ऐसी जरूरत की वजह से किसी की तारीफ करनी ही हो कि तुम ऐसे हो, तो यूं कहे कि फलां शख्स के बारे में मेरी ये राय है, ठीक है। और अल्लाह के नजदीक पसंदीदा अमल यही है कि किसी की तारीफ करनी भी हो तो फिर ऐसे करके कह दिया जाए, या उसके पीठ पीछे उसकी तारीफ कर दी जाए, मगर उसके मुंह पे उसकी तारीफ करना, ये तो ऐसे है कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा कहते हैं कि हमें हुक्म दिया कि हम तारीफें करने वालों के मुंह मट्टी से भर दें, क्योंकि तो वो उसको हलाक कर रहा है ना, उसका बेड़ा गर्क कर रहा है। जिस बंदे की तारीफ इतनी होती जाएगी उसकी अना इतनी बड़ी हो जाएगी, उसके अंदर इतनी हवा भर जाएगी, वो फूल के कुप्पा हो जाएगा कि मैं तो बहुत बड़ी चीज हो गया, मैं तो पता नहीं क्या बन गया। तो ना अपनी तारीफें खुद अपने मुंह से करनी चाहिए और ना ही दूसरों के से पसंद करना चाहिए कि वो आपकी खुशामदे करें। हजरत उमर का कौल है कि जो कहे मैं मोमिन हूं वो काफिर है, और जो कहे मैं आलिम हूं वो जाहिल है, और जो कहे मैं जन्नती हूं वो जहन्नमी है। यानी अपने आप को इतना बड़ा से समझ लेना। और कई लोग तो सोचते हैं कि हम तो हर फन मौला है, हमें तो सब पता है, हम तो हर फील्ड के माहिर हैं, अपनी तारीफें खुद ही करे जाएंगे। तो ये एक जगह ये भी आता है कि आपस में एक दूसरे की मदा सताए से परहेज करो, इसलिए कि ये दूसरे पे छुरी फेरना। हजरत इब्ने मसूद फरमाते हैं कि इंसान के पास एक सुबह को अपने दीन में से कुछ भी नहीं होता, यानी एक सुबह वो ऐसी करता है कि उसके दीन में कुछ भी बाकी नहीं बचा होता, कि वो सुबह किसी से अपना काम निकालने के लिए मिला, उसकी तारीफ शुरू कर दी और इसकी मदा सराई शुरू की और कसमें खा खा के कहने लगा आप तो ऐसे हैं और आप तो ऐसे हैं, हालांकि ना वो उसके नफा का मालिक था ना नुकसान का मालिक था। हालांकि पता नहीं है कि उसके बाद भी पता नहीं है उससे वो इसका काम भी करके देगा या नहीं, लेकिन उसने अपना काम निकलवाना है तो दूसरे के पास जाके ऐसे उसकी तारीफें करता है। तो फिर उन्होंने यही आयत तिलावत फरमाई, वो तो पता नहीं काम करेगा या नहीं करेगा लेकिन उसने अल्लाह को नाखुश कर दिया। तो अल्लाह है जो जिसको चाहे नेक बना दे, पाक कर दे, तुम अपनी पाकी के चर्चे ना करते फिरो। और फिर फरमा दिया अगर तुम्हारी कोई नेकी होगी भी ना तो फिक्र ना करो, अल्लाह ने दे देना है, कोई कहीं रह नहीं जाएगी गार के अंदर भी जाके कहीं वो नहीं। हजरत लुकमान अलैहि सलाम ने अपने बेटे को कहा था ना किसी गार में भी कोई अमल छुपा होगा, जर्रे के बराबर भी कोई होगा तो अल्लाह उसको भी ले आएगा। तो तुम अपनी नेकियों का समझते हो कि कोई भूल ना जाए, अल्लाह नऊजु बिल्ला कहीं रह ना जाए मेरा ये अमल, तो मैं बोल बोल के बताऊं। अल्लाह हमें माफ करे इस सबसे, अब अपनी तारीफें करने से और अपने गुण गाने से हर वक्त, और अपने आप को बड़ी चीजें समझने से, असल में अंदर ना तकब्बुर होता है जिस वक्त ये चीजें जुबान से निकलती, ऐसे ही नहीं निकलती। कि या तो इंसान को अपनी नेकी परहेजगारी का होता है, या इंसान को अपने किसी और खानदान की बड़ाई का होता है, या अपने माल का कोई तकब्बुर होता है, जब ही ये बातें निकलती हैं ये ऐसे चलते फिरते नहीं हो जाती। और हम कहते हैं ना हमें क्या पता हमारे अंदर तकब्बुर है या नहीं, अपनी बातों से देख ले तकब्बुर है कि नहीं है। अगर बातें ऐसी हैं, आप अपनी सारी गुफ्तगू को हम कभी रिकॉर्ड कर लें और उसमें देखा करें कि इसके अंदर हमने क्या क्या कहा है, क्योंकि हमें बातें करके भी तो भूल जाता है, या हमने अपनी कितनी बड़ाइयों की बातें की हैं और कितना दूसरे पे धाक बिठाने के लिए। बाज वो ये शौक होता है कि वो ये बताएं कि हमारे कॉन्टेक्ट कितने बड़े बड़े लोगों के साथ है, हमारा मिलना जुलना कितने बड़े लोगों के साथ है, तो हर वक्त इन इसी चीज के ऊपर शेखियां करते रहते। बाजों को ये होता है कि लोगों को कैसे पता चले आप हमारे पास पैसा कितना है, जाहिर है कोई बैंक अकाउंट तो किसी का नहीं जानता, तो अब किस तरह बताएं। तो वो उसके ऊपर इतनी कुछ ना कुछ करके ऐसे बताते रहते हैं। अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए इससे, देख लो पता नहीं क्या इंसान का अंजाम अल्लाह के हाँ हो, और वो दुनिया में अपनी शेखियां ही मारता रह जाए, अपने आप को बड़ा समझता रह जाए, और पता नहीं अल्लाह के हाँ एक जर्रे बराबर भी वैल्यू है या नहीं, या स्कम ऑफ द अर्थ की तरह है कि गंद है, कूड़ा करकट है जमीन का, क्या पता अल्लाह के हाँ क्या है कद्रो कीमत। जो हीरे की तरह होते हैं ना वो तो अपनी बड़ी चीजें छुपा के रखते हैं। मैंने आपको ये वाक्या शायद पहले भी बताया हुआ, मुझे बहुत इंप्रेस करता है ये वाक्या हमेशा। कई लोग कहते हैं मुझे आप बताएं ना आपके शबो रोज कैसे गुजरते हैं, आपकी एक्टिविटीज क्या हैं, आप कैसे अपना दिन गुजारती हैं और आप कैसे करते हैं, ये बताने वाली बातें नहीं होती हैं, देखो हम इनसे सीखते हैं, ताबेईन से, कि क्या कैसे वो अब्दुल मलिक जो थे, तो उमर बिन अब्दुल अजीज के 12 बेटे थे, सारे ही बड़े मुत्तकी परहेजगार थे, लेकिन अब्दुल मलिक जो थे ना, वो सब में ही बहुत पाकीजा और बहुत ही नेक इंसान थे, और बहुत समझने के अपने बाप को भी इबादत गुजारी पे उकसाने वाले, बड़े औलिया की सफ में आप समझे के शामिल। तो इनके बारे में आता है कि इनके चचा जादे एक दफा इनके घर आए, तो अभी इनकी शादी भी नहीं हुई हुई थी, यानी इतने यंग थे, तो इशा की नमाज पढ़ी, सोने के लिए चले गए दोनों अपने अपने बिस्तर पे लेट के। अब्दुल मलिक ने चिराग बुझा दिया, तो इनके जो चचा जादा आए हुए थे ना, वो कहते हैं कि हम दोनों ने अपनी आंखें बस नींद के हवाले कर दी, यानी हम सो गए। जब आधी रात को कहते मेरी आंख खुली, तो मैं देखता हूं कि अब्दुल मलिक अंधेरे में खड़ा नमाज पढ़ रहा है और कुराने पाक की तिलावत कर रहा है, और वो बस एक आयत है वो पढ़ता ही जा रहा है। तो आयत में भी देखें, आयतें भी कई ऐसे होती हैं कि इंसान के लिए दिल को नरम करने वाली। तो कहते मैंने देखा कि वो इतने सोज के साथ, इतनी आहोजारी के साथ बार बार उस आयत की तिलावत कर रहे हैं, और हजारों कतार रोए जा रहे हैं, और इतना रो रहा है कि उसकी हिचकियां बंधी हुई हैं, और मुझे ऐसे डर लगा कि पता नहीं इसने मर जाना है आज। तो कहते मैंने ना जरा ऊंची आवाज में कहा ला इलाहा इल्लल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे करके जैसे कोई उठने लगता है ना, तो मैंने ऐसे इस अंदाज में कहा जैसे कि मैं उठ रहा हूं, और मैं उठते हुए ला इलाहा करते हुए उठ रहा हूं। तो कहते जूं ही मेरी ये आवाज सुनी है ना उन्होंने, जूं ही कहते कि मैंने ये कहा है ना, ऐसी खामोशी हो गई है जैसे वो कमरे में है ही नहीं, कि इनको पता ना चल जाए कि मैं खड़ा हूं और मैं पढ़ रहा हूं और मैं या मैं रो रहा हूं अल्लाह के आगे। सुभान अल्लाह, कैसे वो अपने आप को छुपाने वाले थे, कैसे वो अपनी इबादत को, यानी सिर्फ अल्लाह को पता है ना, और किसी को भी नहीं पता चलने की जरूरत है। सुभान अल्लाह, तो कहते हैं ऐसे हो गया जैसे सन्नाटा बिल्कुल। अल्लाह हु अकबर, अल्लाह हु अकबर। असल में पता है क्या बात है, जो बर्तन भरा हुआ होता है ना, उससे आवाज नहीं निकलती, और जो खाली बर्तन होते हैं ना, वो उसमें जरा सी चीज आप डाल देंगे ना, तो वो बड़ी आवाज आती है। तो वो हमारे जैसे भी खाली से हैं, इनमें से आवाजें ही आनी है ना फिर, क्योंकि अंदर है जो कुछ नहीं। जो बड़े लोग थे ना, वो इस तरह नहीं हर तरफ अपनी बड़ाइयां करते फिरते थे, शेखियां करते फिरते थे। कितने आपको, आपके सामने भी तो अकवाल है ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कैसे क्या करते थे, क्या फरमाते थे, हजरत उमर क्या फरमाते थे, ये है ना अकवाले सहाबा है ना, कहीं आपको मिलता है कि उन्होंने बड़ी बड़ाइयों की, मैं तो ऐसे करता था, मैं तो ये था, मैं तो वो था, कहीं ये लगता है आपको, कहीं आपने पढ़ा हुआ ऐसी चीजें नहीं। और लोगों ने उनकी बताई कि वो ऐसे करते थे, वो थे ऐसे, हमने उनको ऐसे देख लिया, खुद तो नहीं वो अपनी बड़ाइयां कभी बताई। खुद खलीफा भी होते थे तो तब नहीं वो हजरत अबू बकर सिद्दीक बता रहे कि मैं वो बूढ़ी औरत के घर जाता हूँ, अंधी है तो मैं उसका काम करके आता हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाह हु अकबर। अल्लाह हमें भी ऐसा बना दे, बड़े दिल चाहिए ना इसके लिए, छोटे छोटे तो हमारे दिल हैं, आप कुछ कर लेते हैं तो अब क्या करें, बताना तो है हमने, बताएंगे नहीं तो चैन कैसे आए। हाँ अल्लाह अकबर, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए इन आयात की।
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء